विज्ञान और धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप के महाद्वीप और विशेषकर इंग्लैंड में निर्णायक निर्माणावस्था में जिन तत्वों ने विज्ञान को प्रभावित किया, उनके बारे में काफ़ी विवाद हुआ है। इस चर्चा का केंद्र बिंदु यह परिकल्पना थी कि प्रायोगिक विज्ञान धर्म सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण सांस्कृत अभिव्यक्ति अर्थात प्रोटेस्टेंट नैतिकवाद का स्वाभाविक परिणाम था। इंग्लैंड का समाज, जो कि काल्विनवाद से बहुत प्रभावित था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था और विज्ञान तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के विकास में बहुत अधिक जुड़ा हुआ था, एक ऐसा दृष्टांत उपस्थित करता है जिसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि विज्ञान और धर्म के बीच क्या संबंध था। धर्म के साथ इसके संबंध का परिणाम यह हुआ कि सामाजिक नैतिकता भी इसके दायरे में आ गई और फिर तो सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों का व्यापक क्षेत्र ही इसकी परिधि में आ गया। मैक्स वेबर एवं आर एच टाने की रचनाओं ने एडी कोंडेल, जे पेल्सनर, एस एफ मेसन और आर के मेर्टन के लेखन को प्रभावित किया, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान का सामाजिक निर्वचन करने का प्रयत्न किया। मेर्टन ने प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र के उन तत्वों का विस्तृत वर्णन किया है जो सक्रिय जीवन बिताने एवं वैज्ञानिक प्रयोगों में सम्मिलित होने के अनुकूल हैं। इस संबंध का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उसने वेबस्टर और बायल की रचनाओं से प्रमाण दिए हैं। मेसन ने आरंभ के कतिपय वैज्ञानिकों एवं धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं के बीच कुछ समानताएं दिखाई हैं। प्रोटेस्टेंटवाद और विज्ञान के बीच संबंध होने के उसने तीन कारण बताए। पहला, आरंभिक प्रोटेस्टेंट लोकाचार और वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सादृश्य। दूसरा, वाद के काल में काल्विनवाद में अच्छे कर्मों पर जोर। और तीसरा, प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्रों के कुछ सूक्ष्म तत्वों और आधुनिक विज्ञान के कतिपय सिद्धांतों में एक निश्चित साम्य। मेसन ने अपनी अभिधारणा के समर्थन में जॉन विल्कंस 1614 से 72 का उदाहरण दिया, जो उस समय जागीर के प्रिंस इलेक्टर का पादरी था। मेसन के अनुसार विल्किंस ने 17वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में विज्ञान के अनुप्रयोग, प्रचार और संगठन को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। साथ ही वह उन व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने आरंभ में ही काल्विनवादी धर्म विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के लिए सिद्धांतों के बीच साम्य देखा। मेर्टन ने काल्विनवाद के उस पक्ष को उजागर किया जिसमें प्रायोगिक विज्ञान को मोटे तौर पर स्वीकार किया गया था। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि पदार्थ संबंधी सिद्धांत और प्रकृति के नियमों को समाज में प्रतिष्ठित करने संबंधी विशेष प्रश्नों पर मत परिवर्तन का श्रेय काल्विनवादी धर्म ज्ञान को है। वेबर के अनुसार मेर्टन की परंपरा और प्रोटेस्टेंटवाद, विशेषकर काल्विनवाद, ने पश्चिमी यूरोप में प्रामाणिक विज्ञान के लिए अनुकूल वातावरण पैदा किया। मेर्टन की अवधारणा की कड़ी आलोचना हुई। केपन, कोचर, कोनांट, हाल और कर्टिस आदि सभी ने मेर्टन की मान्यताओं को चुनौती दी है। रैब ने मेर्टन के केवल आंकड़ों को ही चुनौती नहीं दी है, वरन उसके यह सिद्ध करने के प्रयत्न को भी चुनौती दी है कि मूल रूप से प्यूरिटन गुणों ने वैज्ञानिक खोज का संवर्धन किया। मेर्टन की अवधारणा का विरोध भले ही सफल न हुआ हो, फिर भी उस पर उठाई गई आपत्तियों का समाधान किया जाना अभी भी शेष है। इस प्रकार मेर्टन के निष्कर्षों के संबंध में पूरी तरह शंका बनी हुई है और यह सिद्ध करने के लिए नए प्रमाणों की आवश्यकता है कि 1640 के पूर्व प्यूरिटनवाद और विज्ञान के बीच विशेष संबंध था। रैप का तर्क है कि यद्यपि 17वीं शताब्दी के मध्य से परिष्कृत धर्म और वैज्ञानिक प्रगति के बीच जो संबंध थे, उनको दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता, तथापि 1640 से पूर्व के वर्षों की स्थिति इस संबंध में इतनी स्पष्ट नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है कि 1640 तक, जबकि गैलीलियो, हार्वे और देकार्त का कार्य लगभग पूरा हो चुका था, विज्ञान का भी उदय हो चुका था, प्रोटेस्टेंटवाद और विज्ञान के बीच 1640 से पूर्व कोई स्पष्ट संबंध खोज पाना सरल नहीं है। वस्तुतः रैब ने प्रोटेस्टेंट धर्म ज्ञान और विज्ञान के बीच बहुत सारे अंतर विरोध होने के उदाहरण दिए हैं। इन वर्षों में इटली, जो कि एक कैथोलिक देश था, वैज्ञानिक अनुसंधान का एकमात्र निर्विवाद केंद्र था। लगभग उन सभी व्यक्तियों ने जिनका नाम उस समय हुई खोजों से जुड़ा हुआ है, इटली में रहकर अध्ययन किया था। कोपरनिकस एक ऐसा पादरी था जिसकी धार्मिक कट्टरता में कोई भी कमी नहीं थी। गैलीलियो तथा देकार्त भी, यद्यपि चर्च के पदाधिकारियों से उनकी पटती नहीं थी, कैथोलिक धर्म में ही रहना चाहते थे। टीएस कुन तथा अन्य विद्वानों का यह भी कहना है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में कोपरनिकसवाद का विरोध दोनों ही धार्मिक पक्षों, प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक की ओर से हुआ था। लूथ, काल्विन और मेलेकटन आदि सभी ने इस विचार की हंसी उड़ाई कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि पाल तृतीय और ग्रेगरी 13वें जैसे धर्म सुधार विरोधी पोपों ने नए खगोल विज्ञान के उन निष्कर्षों का स्वागत किया जिनके कारण पंचांग में सुधार किया जा सका। क्रिस्टोफर हिल की पुस्तक द सेंचुरी ऑफ रिवोल्यूशन 1961 का प्रकाशन होने से वैज्ञानिक क्रांति में समाज वैज्ञानिक विश्लेषण का सामान्य इतिहास पर पहला वास्तविक प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक में व्यक्त विचारों की पुष्टि उसकी फोर्ड व्याख्यान माला इंटेलेक्चुअल ओरिजिन्स ऑफ द इंग्लिश रिवॉल्यूशन में हुई। यह स्थिति विज्ञान और साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट अध्ययनों से भिन्न थी। हिल के अनुसार विज्ञान एक सामान्य सामाजिक परिघटना है जो प्यूरिटिनवाद और बुर्जुआ वर्ग के उत्थान के सदृश ही हुई और जिसका उनसे संबंध भी था। उसने अंग्रेजी समाज की तत्कालीन स्थिति में विज्ञान के उदय के कारणों को खोजने का प्रयत्न किया है। उसकी दृष्टि में सामाजिक आंदोलन और प्रवृत्तियाँ किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा जनसाधारण से अधिक महत्व रखती हैं। हिल ने अपने निर्वचन को बड़े कौशल से और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। निःसंदेह उसने अपने निर्वचन को मुख्यतया उन भौतिक आंदोलनों तक सीमित रखा है जिनका अंग्रेजी क्रांति के संदर्भ में महत्व है। जिस समुदाय ने 1640 और 1660 के बीच में इंग्लैंड में संगठित प्रायोगिक विज्ञान की नींव डाली, उनका बौद्धिक विकास प्यूरिटन आचार शास्त्र के माध्यम से हुआ। प्यूरिटन आंदोलन में सुदृढ़ वैज्ञानिक एवं प्राविधिक तत्व मौजूद थे। यूटोपियावादी अर्थात आदर्श समाज का स्वप्न देखने वाले और ईसा के स्वर्ण युग की आकांक्षा करने वाले तत्व भी उसमें सहायक सिद्ध हुए। हिल के विचारों के उत्तर में अंग्रेजी विज्ञान के गैर प्यूरिटन पहलुओं की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया है। हिल की दृष्टि में ग्रीसम कॉलेज उसके इस विचार का निर्णायक प्रमाण है कि प्यूरिटनवाद आधुनिक विज्ञान और व्यापारी शिल्पी समुदायों के बीच परस्पर संबंध था, क्योंकि कॉलेज की स्थापना 1579 में सर टॉमस ग्रीसम की वसीयत के द्वारा हुई, जो लंदन का एक बड़ा व्यापारी था। इस कॉलेज का संचालन व्यापारियों के हाथ में था और इनमें व्यापारियों तथा शिल्पियों को अंग्रेजी भाषा में अद्यतन विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। कार्नी के अनुसार ग्रीसम कॉलेज मध्यवर्गीय प्यूरिटन शैक्षणिक संस्था न होकर एक ऐसी संस्था थी जो विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित थी। कार्नी ने अपने तर्क में कहा है कि इस कॉलेज के शिक्षक वर्ग में कई लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। इस दृष्टि से यह कोई सामान्य वैज्ञानिक विद्यालय नहीं था। धर्म, विधि, भौतिकी, कला, संगीत, भाषण कला के साथ साथ इसमें खगोल शास्त्र तथा ज्यामिति का भी अध्यापन किया जाता था, तथा इसकी संकल्पना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के समान ही थी। ग्रीसम कॉलेज एक ऐसा कॉलेज न था जो मात्र नवोदित पूंजीपति वर्ग के हित में खोला गया हो, वरन यह एक ऐसी संस्था था जिसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बहुत कुछ ग्रहण किया। जहाँ तक हिल के इस दावे का संबंध है कि विज्ञान के विकास के लिए निर्णायक सामाजिक प्रेरणा व्यापारियों और शिल्पियों के वर्ग से मिली, कियर्ने का कहना है कि 17वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही कम लोग सक्रिय थे। 1550 से 1700 के बीच गणित का प्रयोग करने वालों की संख्या केवल 600 थी। ये लोग शिक्षित समुदाय पर आश्रित थे और भूमि सर्वेक्षण तथा नौका चालन के रूप में दो प्रकार से जनता को सेवा प्रदान करते थे। भूमि सर्वेक्षण करने वाले गणितज्ञों के संरक्षक जमींदार वर्ग के लोग थे, जबकि नौका चालन में सहायता करने वाले गणितज्ञों को राजाओं, अभिजात वर्ग एवं व्यापारियों से प्रोत्साहन मिलता था। राजा लोग विज्ञान को प्रोत्साहन देते थे तथा तोपों, बंदूकों और युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले आयुधों के निर्माण के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों के लिए आर्थिक सहायता भी देते थे। व्यावहारिक गणित को संरक्षण किसी एक ही स्रोत से नहीं मिला। कियर्ने को व्यापारियों तथा राजनीति और धर्म तथा विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट संबंध दिखाई नहीं दिया। रैब ने वैज्ञानिक खोज में कैथोलिक योगदान का उल्लेख किया है। उसका कहना है कि केपलर यद्यपि प्रोटेस्टेंट था, तथापि वह खगोलीय प्रेक्षणों के लिए जेसूट लोगों पर निर्भर रहता था और एक जेसूट ने ही गैलीलियो की खोजों के विवरण को पीकिंग में चीनी भाषा में प्रकाशित किया। रैब के अनुसार हिल ने प्यूरिटनवाद के केवल उन्हीं पक्षों को प्रस्तुत किया है जो विज्ञान के अनुकूल थे और उसके अन्य पारलौकिक तथा अबौद्धिक पक्षों को नज़रअंदाज कर दिया है। उसके अनुसार प्यूरिटनवाद का मुख्य प्रयोजन धार्मिक शिक्षा था, न कि विज्ञान। यद्यपि रैब ने इस बात को स्वीकार किया है कि 1640 के बाद के वर्षों में प्यूरिटनवाद वैज्ञानिक प्रगति में सहायक सिद्ध हुआ, तथापि विज्ञान के उद्गम की संपूर्ण कहानी में धर्म का स्थान नगण्य है। विज्ञान के विकास में ऐसे लोगों ने योगदान किया जो प्यूरिटन अथवा प्रोटेस्टेंट नहीं थे। इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि प्यूरिटनवादियों की वैज्ञानिक उपलब्धियां कम थीं। यद्यपि यूरोप के कई वैज्ञानिक कैथोलिक थे, तथापि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि प्रति सुधार आंदोलन के बाद वैज्ञानिक विचारों के प्रसार के लिए रोमन कैथोलिक वातावरण की तुलना में प्रोटेस्टेंट वातावरण अधिक अनुकूल था। इंग्लैंड में विज्ञान बहुत लोकप्रिय था और अधिकाधिक लोग विज्ञान में रुचि लेते थे और उसको समझते थे, जिसके अनुसार एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ जो पहले से अधिक जिज्ञासु, संकालु, गतिशील तथा निर्माणशील था। और प्रोटेस्टेंटवाद ने पादरियों की शक्ति की छीड़ करके एवं अपने धर्म सिद्धांत और लोकाचार द्वारा भी विज्ञान के उद्गम में योगदान किया। पादरियों के प्रभुत्व का स्थान अंतरात्मा और अनुभव ने ले लिया। प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसी कोई तालिका नहीं थी जैसी कि कैथोलिक धर्म में थी, जिसमें 1757 तक उन सभी पुस्तकों का नाम शामिल रहा था जो कोपरनिकस के सिद्धांत का प्रतिपादन करती थी तथा जिसमें डेकार्त की पुस्तकों का नाम बहुत बाद तक लिखा रहा। हिल के अनुसार प्रोटेस्टेंटवाद ने एक अधिक उन्मुक्त बौद्धिक वातावरण को प्रोत्साहित किया, जिससे आगे चलकर वैज्ञानिक खोज को काफ़ी प्रेरणा मिली। समाज के साथ विज्ञान के संबंधों के बारे में जो विभिन्न परिकल्पनाएं हैं, उनका मूल्यांकन और परीक्षण करने के लिए रॉयल सोसाइटी के इतिहास की, उसकी उत्पत्ति एवं उसके सदस्य द्वारा किए गए अनुसंधान की जांच की गई है। कुछ लोगों का विचार है कि रॉयल सोसाइटी का प्रेरणा स्रोत प्यूरिटनवाद था और कुछ का विचार है कि वह स्रोत उदारवाद था, जबकि कुछ के विचार में इसे इंग्लैंड से प्रेरणा मिली। मेरटन के अनुसार एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में इस सोसाइटी के कार्य केवल उपयोगिता से संबंधित थे, जबकि परवर के विचार में उनका उपयोगिता से कोई संबंध न था। मेरटन ने अपने निष्कर्ष निकालने के लिए फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस का विश्लेषण किया, जबकि अन्य लोगों ने शुद्ध परिमाणात्मक प्रणाली का सहारा नहीं लिया है। लॉर्ड मलिगन ने विज्ञान के प्रति रुचि एवं राजनीतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों के बीच संबंध का पता लगाने के लिए सरल परिमाणात्मक प्रणाली को अपनाया। मलिगन ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1660 के बाद के वर्षों में जिन लोगों में विज्ञान के प्रति खास तरह का उत्साह था, वे लोग ऐसे लोग थे जिनकी पृष्ठभूमि एक राजभक्त, आंग्लवादी अथवा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त भद्र पुरुष की थी। ऐसे व्यक्ति मध्यवर्गीय व्यापारी प्यूरिटन राजनीतिक उग्रवादी अशिक्षित अथवा उपयोगितावादी नहीं थे। आंकड़ों से जो जानकारी मिलती है उससे इस धारणा का खंडन होता है कि विज्ञान का प्यूरिटनवाद से कोई संबंध था। इस जानकारी से सामान्यतः इस विचार का समर्थन होता है कि विज्ञान के क्षेत्र में केवल अनुदार आंग्ल भद्र समुदाय का विशेषाधिकार था। तथापि ऐसी बात नहीं है कि मलिंगन के सांख्यिकीय निष्कर्षों को केवल इस विषय के बारे में अंतिम रूप से निर्णायक निष्कर्ष मान लिया जाए। इस विषय में कोई संतोषजनक सांख्यिकीय समाधान खोजने से पूर्व यह आवश्यक है कि रॉयल सोसाइटी की उत्पत्ति और उसके आरंभिक इतिहास से संबंधित कतिपय मूल समस्याओं का समाधान किया जाए। यह भी निश्चित करना होगा कि क्या रॉयल सोसाइटी का इतना महत्व था कि विज्ञान की सामाजिक उत्पत्ति की खोज के परिप्रेक्ष्य में उसका अलग से अध्ययन किया जाए। जिन वर्षों में सोसाइटी सर्वाधिक सक्रिय थी उन वर्षों में उसने इंग्लैंड में भी विज्ञान जगत को पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया था और शुरू के 10 वर्षों के बाद तो उसका प्रभाव और भी कम हो गया था। कोई इतिहासकार चाहे कोई भी दृष्टिकोण अपनाए प्रत्येक विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति के बारे में उसके गुण दोष के आधार पर विचार करना होता है। यदि इंग्लैंड में प्रयोगात्मक विज्ञान के उदय की व्याख्या प्रोटेस्टेंट नैतिकता के संदर्भ में की जाती है तो यह उसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य परिस्थितियों में भिन्न कारणों के संदर्भ में कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। यदि हम पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल के बीच की यूरोपीय इतिहास पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि उस समय कई आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। पूंजीवाद का उदय, व्यापारी वर्ग की उन्नति, कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद तथा प्यूरिटन नैतिकता का उदय और आधुनिक विज्ञान का आगमन। इन आंदोलनों के बीच कोई कारण कार्य संबंध थे या नहीं और यदि थे तो वे क्या संबंध थे, यह प्रश्न अभी भी इतिहासकारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना अवश्य है कि राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों के समान विज्ञान में भी पुरानी परंपराओं से संबंध विच्छेद हुआ जिसके फलस्वरूप मानवीय सृजनात्मक उन्मुक्त हुई। 17वीं शताब्दी के अंत तक विज्ञान का प्रादुर्भाव हो चुका था, उसके प्रभाव एवं प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। प्रयोग और परीक्षण की नई प्रणाली तथा विश्व के यंत्रवत होने के विचार ने न केवल प्राकृतिक विज्ञान को प्रभावित किया वरन विश्व के बारे में शिक्षित वर्ग की अनुभूति और सोचने के तरीके पर भी असाधारण प्रभाव डाला। विज्ञान के प्रणालियों तथा मॉडलों के दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि सभी विषयों को प्रभावित किया। वैज्ञानिक क्रांति ने पारंपरिक एवं आधुनिक चिंतन शैलियों के बीच एक विस्तृत खाई का निर्माण किया। अतीत और अतीत के सभी सद्गुणों ने अंतिम विदा ले ली और अपनी तमाम खामियों के साथ आधुनिकता का सृजन हुआ। ड्राइडन ने 1700 में परिवर्तन की भावना इस प्रकार व्यक्त की, पुराना युग गया, अच्छा हुआ नवीन के सृजन का समय अब आया है।